मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 10 जून 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनका नाम है शालिनी पाल जो गोपीखेड़ा उत्तर प्रदेश से हैं। मित्रों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत में जो ऑनलाइन शिक्षा की बातें हो रही हैं इसकी यूटिलिटी पर कुछ बातें आप सबसे करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को आइए देख लेते हैं। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण खबर यह है जो आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में बहुत विस्तार के साथ सुना होगा और इस पर बहस भी थी। मैं दूरदर्शन की बात कर रहा हूँ कि दो दिन पहले जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल जी, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली के जो निवासी हैं यानी कि दिल्ली के रहने वाले का जिसके पास प्रमाण पत्र होगा उन्हीं का इलाज किया जाएगा और दिल्ली से बाहर आने वाले लोगों का इलाज नहीं होगा। और आप जानते हैं कि दिल्ली जो है ना कई राज्यों से घिरा हुआ है, उसके एक साइड में उत्तर प्रदेश जैसा बहुत बहुसंख्यक आबादी वाला राज्य है, दूसरी तरफ हरियाणा बिल्कुल सटा हुआ है, इस तरह के कुछ राज्य हैं और लगातार दिल्ली में आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो देश की राजधानी है, राइट। उनके उस निर्णय की थोड़ी सी आलोचना भी हुई थी और बाद में फिर वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उन्होंने सरकार के इस निर्णय को उलट दिया और ओपनली यह बात कही कि नहीं, दिल्ली में बाहर से आने वालों का भी इलाज होगा, यानी कि यह सबके लिए ओपन है। जो उन्होंने अपनी बात कही है उसमें उन्होंने स्पेशली जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 है जो मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है उसका हवाला दिया है। इसका मतलब है कि सिविल सर्विस एग्जाम की दृष्टि से ये जो अनुच्छेद 21 है अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए अनुच्छेद 21 क्या है। अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन के अधिकार से, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। और जीवन के अधिकार की व्याख्या होते होते आगे चल करके उसमें राइट टू हेल्थ भी शामिल हो गया है, स्वास्थ्य का भी आपको अधिकार है। यानी कि जो राइट टू हेल्थ है वो चूंकि राइट टू लाइफ का ही हिस्सा है जो हमारा अनुच्छेद 21 हमें प्रदान करता है, इसीलिए उन्होंने राज्य सरकार के इस निर्णय को उलट करके दिल्ली के अस्पतालों को सभी के लिए ओपन कर दिया। दोस्तों यहाँ रेफरेंस के तौर पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जो कर्नाटक की सरकार है उसने भी कुछ इसी तरह की घोषणा की थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं आ पाई। ये बात कि कर्नाटक ने कहा था कि जो केरल के केसरगढ़ के जो लोग हैं सीमा पर पड़ता हुआ वो बंगलुरु के हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकेंगे, यानी कि केरल के जो लोग हैं वो कर्नाटक में नहीं आ सकेंगे। हालांकि इसकी फिर उतनी चर्चा नहीं हुई लेकिन चूंकि दिल्ली राजधानी थी तो इसकी चर्चा होनी ही होनी थी। दोस्तों कल दूरदर्शन पर जो डिबेट हो रहा था उसमें एक दो और आर्टिकल्स की चर्चा की गई है, आपके रेफरेंस के लिए मैं बताना चाहूँगा। हमारे दो और आर्टिकल हैं जो राज्य सरकार के इस आदेश को कमजोर करते हैं, वो कौन कौन से हैं। देखिए हमारा एक अनुच्छेद 19 है जिसमें संचरण का अधिकार दिया गया है, 19 का जो चौथा पॉइंट है संचरण का अधिकार, यानी कि देश के नागरिक पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। अब आप देखिए कि अचानक लॉकडाउन हो गया, दिल्ली में बहुत सारे लोग थे, अब वहाँ वो फंसे हुए हैं। ठीक है कि अब रेल सेवा और आपके विमान सेवा शुरू हो चुकी है लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए हों, कुछ लोग तो परमानेंट वहाँ नौकरी कर रहे हैं लेकिन वो दिल्ली के वासी नहीं हैं, तो वो सब वहाँ हैं, है ना, संचरण करते हुए वहाँ पहुँच गए हैं। अब उनके पास अगर दिल्ली के निवासी होने का प्रमाण पत्र नहीं है तो उनका इलाज नहीं हो सकेगा, तो संचरण का जो अधिकार है वो यहाँ बाधित हो रहा है। और इसी तरह से अनुच्छेद 15 तो आप जानते हैं बहुत ही पॉपुलर अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म, मूल, वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। तो यहाँ जन्म स्थान के आधार पर विभेद हो रहा है या निवास स्थान के आधार पर विभेद हो रहा है, तो इस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स का ये उल्लंघन करता है। तो इसी को आधार बनाते हुए खासकर उन्होंने अनुच्छेद 21 की बात कही, राज्य सरकार के इस आदेश को निरस्त कर दिया है। तो चूंकि मूल अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है तो आपकी जानकारी में ये होना चाहिए और अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो ये जो नई घटना है इस घटना की चर्चा आपको जरूर करनी चाहिए। दिल्ली से ही जुड़ी हुई एक और बात है मित्रों, कभी कभी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इस तरह की बारीकियों पर आपकी कितनी नजर है वो देखा जाता है। कल आप देखिए कि दिल्ली में मीटिंग हुई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मीटिंग हुई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वो दिल्ली की एजेंसी थी, है ना। एक तो हमारे राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है, प्राधिकरण है, जिसके चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया था कि इसके जो 3-4 टीयर्स हैं। इसके बाद प्रत्येक राज्य स्तर का प्राधिकरण होता है जिसके चेयरमैन वहां के चीफ मिनिस्टर होते हैं, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है जिसके चेयरमैन वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। अब जब कल मीटिंग हुई तो देखिए कि जो मीटिंग हुई उसके जो चेयरपर्सन थे वो केजरीवाल साहब नहीं थे, यानी कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर नहीं थे, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस मीटिंग की अध्यक्षता की है, यानी कि दिल्ली में जो प्राधिकरण है उसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है आपके ध्यान में होना चाहिए, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और जो चीफ मिनिस्टर हैं उसके वाइस चेयरपर्सन हैं, उपाध्यक्ष हैं। अब आप देखिए कि दिल्ली की स्थिति अलग है तो ये व्यवस्था की गई है, लेकिन पुदुचेरी को क्या करेंगे, पुदुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन वहां राज्य है, वहां चीफ मिनिस्टर है, तो यहां आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि वहां का जो प्राधिकरण है, जो पुदुचेरी का जो प्राधिकरण है, याद रखिए कि उस प्राधिकरण के अध्यक्ष वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। मतलब आप दिल्ली के पैरेलल लेकर के आप मत कह दीजिएगा कि वहां के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वहां के अध्यक्ष वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, जबकि दिल्ली के अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यह बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों एक नाम अभी अखबारों में कल से आ रहा है, वो है सिसिल रोड्स का नाम, सिसिल रोड्स। ये जो सिसिल रोड्स हैं ये बेसिकली ब्रिटेन के नागरिक रहे हैं और काफ़ी बड़े उद्योगपति भी रहे हैं, बिजनेसमैन भी रहे हैं, कुछ सीमा तक पॉलिटिशियंस भी रहे हैं। अभी इनका नाम खूब आ रहा है और जो ब्रिटेन है वहाँ के लोग इनका खूब विरोध कर रहे हैं, और ख़ासकर इनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई थी, उस मूर्ति को तोड़ करके समुद्र में या नदी में कहीं डुबोया भी गया, कल उसके चित्र अखबारों में छपे थे। और आज ये खबर छपी है कि जो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट हैं, वो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज के बाहर जो इनकी मूर्ति लगी हुई इसे हटा दिया जाए। क्यों हटाने की मांग कर रहे हैं? बेसिकली कहा यह जाता है कि ये जो रोड्स थे बाद में उदारवादी हो गए थे, इन्होंने समाज सेवा के लिए काफ़ी काम किया तो उसी के सम्मान में उनकी मूर्ति लगा दी गई, लेकिन ये नस्ल भेद वाले व्यक्ति थे और ये कहा जाता है कि ये जो काले लोग होते थे उनका बाकायदे व्यापार किया करते थे। तो चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि नस्ल भेद को लेकर के अमेरिका की क्या स्थिति है, बल्कि पूरे यूरोप में उसके विरोध में जो नस्ल भेद की नीति है, जो ब्लैक के साथ भेदभाव किया जाता है, आंदोलन चल रहे हैं, तो उसी आंदोलन का ये एक हिस्सा है, तो बस थोड़ी सी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। फ्रेंड्स आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं और वो है ऑनलाइन शिक्षा। आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा की जबरदस्त रूप से बातें हो रही हैं, नो डाउट कि इसके बहुत अच्छे पक्ष हैं, उन अच्छे पक्षों का हम उपयोग कैसे करें यहां पर बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। देखिए नो डाउट कि ऑनलाइन शिक्षा एक तो बहुत ही सस्ती पड़ेगी, आपके लिए बहुत सुविधाजनक है कि आप अपने घर में रह करके दुनिया की बेस्ट एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, दुनिया के बेस्ट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, उनके लेक्चर सुन सकते हैं, उनके समझाने बुझाने के तौर तरीके का फायदा उठा सकते हैं, एनिमेशन के जरिए बातों को बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अदरवाइज छोटी जगहों को ये सुविधाएं कहीं हासिल नहीं हो सकती कि वो बेस्ट टीचर से पढ़ सकें। और शिक्षा अपने आप में, खासकर हायर एजुकेशन अपने आप में इतनी महंगी है कि जाकर के पढ़ पाना तो बहुत लोगों के लिए केवल जीवन भर का एक सपना ही रह जाता है, ये सारी बातें हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पक्ष दोस्तों ये है कि जब हम क्लास में जा करके एजुकेशन लेते हैं, क्लास में बैठ करके जहाँ इकट्ठे कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, टीचर हमारे सामने है, वो हमें पढ़ा रहा है, बता रहा है, यानी कि इंटरपर्सनल लेवल पर जब हम एजुकेशन लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होता है, क्योंकि टीचर के साथ हम सीधे जीवंत रूप में संवाद कर रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। फिर देखिए स्टूडेंट जो है वो घर से तैयार होकर के जाता है, इस अपने मित्रों के साथ बस में बैठ करके जाता है, या चलिए अकेले भी जाता है तो वहाँ खाली समय में वो अपने मित्रों से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, बहस हो रही है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी बातें उसके पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप करती हैं। और यहां तक कि उसके सोचने समझने का जो होराइजन है, जो आयाम है, जो क्षितिज है, उन्हें भी बहुत विस्तार देती है। जबकि अगर हम अपनी पूरे एजुकेशन सिस्टम को मशीन तक सीमित कर दें तो वो जो एजुकेशन है, नॉलेज सूचना के रूप में तो हमारे अंदर आ जाएगा, लेकिन पर्सनालिटी के रूप में वो हमारा विस्तार नहीं कर सकेंगे। और यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि अभी ऑनलाइन एजुकेशन कई इंस्टीट्यूशन ने शुरू कर दी हैं, खासकर स्कूल लेवल के इंस्टीट्यूशंस ने, और जब बच्चे लगातार उस ऑनलाइन क्लासेस को देख रहे हैं तो उनकी आँखों में प्रॉब्लम हो गई है। देखिए, हमारे पास जो सोशल मीडिया आ गया है उसने हमारे लोगों को, और खासकर जो यंग जनरेशन है और जो इमर्जिंग यंग जनरेशन है, उसको सोसाइटी से लगभग लगभग काट सा दिया। आउटडोर गेम्स खत्म हो गए हैं, सोसाइटी से उनका इंटरेक्शन खत्म हो गया है। जो भी थोड़ा बहुत उनका वक्त मिल उनके पास रहता है वो सोशल मीडिया में वो गुजारते हैं, यानी कि एक जीवंत समाज से उनका संपर्क लगभग लगभग खत्म होता जा रहा है। और अगर उसको हम ऑनलाइन एजुकेशन में शिफ्ट कर देंगे तो नहीं मालूम कि आगे की जनरेशन जो होगी उसकी सोच क्या होगी, उसका व्यक्तित्व क्या होगा, उस किस तरह के विचारधारा के वे लोग होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके इमोशंस बिल्कुल खत्म से हो जाए। दोस्तों, इसका पहला पक्ष है। तो क्या यह बिल्कुल बेकार है? इसका दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष दोस्तों यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इनिशियल लेवल की जो हमारी एजुकेशन है, या यूं कह लीजिए कि जो कॉलेज तक की जो हमारी एजुकेशन है, वो इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए। हाँ ठीक है, विकल्प के रूप में ये भी मौजूद रहे, जो नहीं जा सकते हैं को कुछ तो करें, जैसे कि अब डिस्टेंस एजुकेशन चल गया है। तो डिस्टेंस एजुकेशन भी वही है कि ठीक है, आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पर रहिए, आपके पास कोर्स आ जाता है, आप पढ़िए और एग्जाम दे दीजिए। जैसे प्राइवेट, हम लोगों के समय में प्राइवेट एजुकेशन होता था, आपको कॉलेज स्कूल जाने की जरूरत नहीं, आप प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में एग्जाम में अपीयर होइए। मैंने तो इसी तरह से अपनी एजुकेशन पूरी की है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक पैरेलल आप कह लीजिए कि एक विकल्प के रूप में ये हो सकता है। और जो दूसरी बात है कि जब हमारे कॉलेज की एजुकेशन पूरी हो जाती है तो फिर जब हम सपोर्टिव एजुकेशन की कोशिश करते हैं तब डेफिनेटली जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। जैसे देखिए कि अभी कोचिंग का बहुत ज़बरदस्त रूप से संस्कृति कोचिंग की उभर रही है। हर स्टूडेंट को लगता है कि अगर उसे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होना है तो कोचिंग लेनी चाहिए, उससे उसको मदद मिल जाती है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो उसके खर्च को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चूंकि उनके एजुकेशन जो प्राइमरी मिडिल और जो हायर एजुकेशन है और जो कॉलेज की एजुकेशन है वो बकायदे प्लेस में जाकर के हो चुकी, इंस्टीट्यूशनल हो चुकी है, तो व्यक्तित्व के रूप में उन्हें जो हासिल करना था वो हासिल कर चुके हैं। तो अब अगर वो इस ऑनलाइन एजुकेशन में शिफ्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अब उनके सामने व्यक्तित्व की चुनौती उतनी नहीं है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि क्वेश्चन इमर्ज हो रहा है निबंध के विषय के रूप में भी, और यहाँ तक कि जो आपके जनरल स्टडीज़ का फोर्थ पेपर है जिसका संबंध व्यक्तित्व से होता है उस पेपर के रूप में भी। तो मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, और जब भी आपको इस टॉपिक पर कोई और ओपिनियन पढ़ने को मिलता है तो मेरा सजेशन है कि प्लीज़ आप उसे नोट कर लें, तो ताकि यह विषय आपका और अधिक समृद्ध हो सके। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: सोमदत्त हिमाचल प्रदेश से, विभास कुमार ठाकुर बिहार से, पटेल मालविका, नेहा शिवहरे छतरपुर मध्य प्रदेश से, मोनिका ब्रह्मे, अनूप राज बारदुली से, लालू शुक्ला बर्णपुर पश्चिम बंगाल से, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, और अवधेश सिंह यादव। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।